कोरोना हो या किसी कोई भी चीज़ हो, अपने को डरना किसी से नहीं चाहिए, किसी से भी डरना नहीं चाहिए। हर समय ना तैयार रहने चाहिए मरने के लिए, रेडी रहने चाहिए, रेडी भगवान जब चाहे बुलाओ रेडी हूँ मैं आने के लिए, ऐसा होना चाहिए। कोरोना से डरना नहीं चाहिए। कोरोना से मालूम है आपको पोजीशन क्या है लोगों की? 7% लोगों को ही कोरोना हुआ है, ये आपको मालूम है?
ओनली सेवन परसेंट
लोगों, उसमें से 0.1% का ही डेथ हो गया है। वो भी कैसे? बुढ़े, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये हार्ट डिसीज वगैरह, किडनी डिसीज, वो लोग ही मरे हैं। लेकिन कोई ऐसा कोरोना मतलब डेथ नहीं है, लोगों के मन में एक गलत फहमी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 7% लोगों को कोरोना हुआ है, लेकिन 50% लोग भय से ग्रस्त हैं और साइकेट्री लोगों का दिमाग खा रहे हैं। डॉक्टर सावे का ये स्पीच मैंने सुना था, मतलब 50% सोसाइटी में लोग मानसिक बीमारी से परेशान हैं, कोरोना के भय से परेशान हैं। होगा तो कैसे होगा, होगा तो क्या होगा, मरूंगा कि जिंदा रहूंगा, लेकिन नहीं मरते कोरोना से लोग। जो लोग मरते हैं उनको, उनका ऑलरेडी एज हो गया है, या तो कोई बीमारी अस्थमा है उनको ऑलरेडी, या कोई ऑलरेडी लंग की बीमारी है, COPD है, वो रिस्की लोग हैं, वो लोग को हुआ तो मर सकते हैं। लेकिन वो लोग भी जय पता का मारा उसको कोरोना हो गया, लेकिन वो जिंदा लौट के आए, उनको कुछ नहीं हुआ। क्योंकि इसका ना एक कारण क्या मालूम भाई का, आप लोग जो काम पे आते थे ना, वो पहले भाई बहुत सबको दिखता था ऐसा, ये तो बहुत ज़्यादा भयभीत हुआ करती थी। हाँ, बहुत डरी हुई थी मैं, कई बार 3-4 बात किया तो हर टाइम उसको ऐसा था, अरे वो गुड गुड। लेकिन बाद में जब आप रोज काम पे आने लगे, आपका भय निकल गया। क्यों? जब तक आपका माइंड व्यस्त है सेवा में, काम में, कुछ करने में, तब तक आपका भय वहाँ पर बैठता नहीं है। भय को कैसा, अभी इधर 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 इतने सब सीट फुल है, ये खाली है सीट, इधर ही आदमी आके बैठ सकता है, बाकी कहीं बैठ सकता है क्या? आपके गोद में भी जगह नहीं है बैठने के लिए। तो जब जगह खाली होगी तभी भय आके वहाँ बैठेगा। आपका सारा कुर्सी फुल है तो भय भी वहाँ पर आके बैठ नहीं सकता है। तो भय से मुक्त होने का क्या रास्ता है? व्यस्त रहो, हमेशा सेवा में बिजी रहो। फिर भय करने के लिए टाइम ही नहीं आपके पास, सोचने के लिए भी टाइम नहीं। भय उत्पन्न होने के लिए सोचना पड़ता है ना कि ऐसा होगा तो कैसे होगा। अभी वो डॉक्टर, हमारे नाम लेता ना, यहाँ पर डॉक्टर है, बहुत डरती थी कि मेरे घर 2 बच्चे हैं, मेरा ऐसा वैसा, तो बहुत ज़्यादा पौना पौना घंटा स्नान करती थी, पहना पहना कपड़ा धोती थी, क्या क्या करती थी, बहुत ज़्यादा। एंड में हो गया कोरोना उसको, अभी तो बिंदास है, अभी क्या टेंशन नहीं है। क्या है ना, वो एक गुफा ऐसी है, वहाँ जाने तक डर है, जाने के बाद कुछ नहीं है, जाके घूम के आने का हो गया। तो मेरा क्या हुआ, मैंने वैक्सीन लिया, मेरे को कुछ समझा भी नहीं, कुछ भी नो खा के कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ, कुछ नौसिया, वॉमिटिंग, कुछ थकान बिकान, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 5वें दिन मुझे 1 साल के बाद में गला खराब हो गया और कफ हो गया थोड़ा थोड़ा सा वगैरह। मैंने एंटीबायोटिक लिया तो कोई बलगम नहीं, कुछ नहीं, एंटीबायोटिक का कोर्स ख़त्म हो गया, लेकिन गला जाम एकदम। मैं 3 दिन काम पर नहीं आया क्योंकि मेरा वॉइस पूरा ब्लॉक था कम्प्लीटली। तो ये सब लोगों को मालूम पड़ा, काउंसिल लोगों को, कि प्रभु जी ने 4 लेक्चर कैंसिल किए जो कभी भी नहीं करता मैं। भागवतम क्लास कैंसिल किया, एक मंडे का भागवतम क्लास मेरा चलता है ना, वो 9th कैंटो 10th कैंटो, वो कैंसिल कर दिया, और 2 बच्चों की क्लास, 4 क्लास कैंसिल कर दिए। तो लोगों को समझ में आया कि कुछ सीरियस मैटर है। तो फिर वो निमचंद्र वो भाग क्या है, तो बोले ये प्रभु जी कोरोना की दवा है, वो आप ले लो, वो एंटीवायरल है, आपको वायरल गले का इन्फेक्शन हो गया है। क्या बताऊँ आपको, 5 दिन के बाद में मेरा गला इतना भी खुला नहीं था, एंटीबायोटिक कोर्स खत्म हो गया, ना नाक में पानी आ रहा है, ना बलगम है, कुछ नहीं है, खाली गला जैम है पैक्ड, और देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि वायरल हो गया है। तो मैंने ना वो डोज सुनने बोला, घर पे लेके आए बेचारे, वो ले लो उसको आप, ठीक हो जाएंगे आप। खाली ना फर्स्ट उसमें ना हल्दी, 1 ग्लास गौमूत्र का गर्म, एक गर्म पानी है उसमें 2 चम्मच गौमूत्र, तो हल्दी डाल के, गौमूत्र डाल के उसका गरारा करना है। गरारा करते गला पूरा खुल गया मेरा, एक बार गरारा करते ही गला 100% खुल गया। और फिर जो 3 डोसेस लिए, शाम तक मेरा गला बिला सब पूरा ठीक हो गया मेरा, कुछ भी नहीं हुआ। इतना पावरफुल दवा है वो, कोरोना के लिए है ही, बाकी वायरल के लिए, मेरे को कोरोना तो हुआ नहीं था, लेकिन जो वायरल मेरे को पता है आपको, जब कोरोना शुरू हुआ तो मैं 23 दिन खांसी से परेशान था, खास खास के मैं रो रहा था एक्चुअली, रात रात को मैं जगा था, 23 दिन था मुझे, तभी भी रहता तो अच्छा था, लेकिन अभी दवा नहीं आई थी, वो एंटीवायरल है, वायरल में कोरोना भी आता है, तो फिर मैं ठीक हुआ इसलिए मैं नासिक गया वो करने के लिए। अभी वो कहानी सुनो आप। मैं तो, मेरे काउंसिल लोग परेशान हो गए, प्रभु जी क्यों जा रहे हैं, प्रभु जी क्यों जा रहे हैं, ऑलरेडी 58 है, अभी डायबिटीज़ है, ऊपर से ये सब कोरोना का नंबर बढ़ रहा है, ऊपर से कब परेशान भी बीमार भी है, नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कहा आप मुझे फ़ोन किया ना, आप उनको बोलो जिनका बच्चे का मुंडन करने जा रहा हूँ, उनको बताओ। तो सब उनको फ़ोन गए, निर्मल चंद्र के गए, सुनार सखी के गए, और एक डॉक्टर माता जी उनके फ़ोन गए कि भाई व्हाई आर टेकिंग प्रभु जी, जस्ट पोस्टपोन इट ना वगैरह। तो बहुत दुखी हो गया आदमी, बोले इतना सारा फंक्शन नासिक में, पटना से बिहार से सब लोग आ रहे हैं, इधर से आला आ रहे हैं, बड़ा मतलब बड़ा नहीं था लेकिन किया था। तो फिर वो रो रो के मेरे को फ़ोन किया, प्रभु जी क्या करूँ बोलो आप, मैं करूँगा सब कुछ। तो मैंने बोला कोरोना का अभी भी चल रहा है चक्र, तो आपको ना सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना और मास्क, ये 3 चीज़ आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बीमार हूँ, आप मुझे भी रिस्क में डाल रहे हो, खुद को भी डाल रहे हो, मुझे भी डाल रहे हो। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी करके एकदम कैसा भी करके मुझे ही लाना था उनको, तो मैं हाँ बोला तो एकदम खुश हो गया और बोला सब करूँगा प्रभु मैं। वहाँ पर मैं गया ना, कुछ नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, मास्क नहीं, कुछ भी नहीं। अभी मैं अभी क्या उधर चिल्लाऊँ छोड़ जाके, मैं चुपचाप यज्ञ किया और यज्ञ के लिए बाहर निकला, तो यज्ञ के बाद रूम पर चला गया, मैं किसी से सोशलाइज नहीं किया, लेक्चर भी सबको दिया लेकिन दूर से दिया। बाद में क्या होना चाहिए बताओ, बेबी जिसका मुंडन किया ना, दोनों माता पिता का पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव, अभी घर में क्वारंटाइन है, बुखार खांसी सब कुछ है। मैंने बोला आपको मैंने बोला था ना, आप में से कोई तो भी आदमी कैरियर था, एसिम्प्टोमेटिक था, आपके मेहमान में आया था, आपने कोई एक भी रूल फॉलो नहीं किया मेरा जो बताया हुआ, इसलिए मैं तो निकल गया, आप उसमें फंस गए। इसलिए कभी भी ना जो बताया हुआ ना फॉलो करना चाहिए, ज़्यादा होशियारी समझ के उसको डिसोबे नहीं करना चाहिए। अभी 9 मार्च तक क्वारंटाइन है, 28 का लौट के आए, 9 मार्च तक घर पे बैठे खास रहे, ऐसा है। तो वो दवाई इतनी जादुई दवाई है, मैं आपको सबको बताता हूँ कि आपको ना कुछ भी हो जाए ना आगे, समझो सर्दी खांसी कुछ, सर्दी हो गया, गला खराश हो गया ना, पहले आप वो गौमूत्र अर्क 10 ml एक ग्लास ठीक से गर्म पानी, ज़्यादा बहुत बॉयलिंग नहीं, गर्म होना चाहिए, और हल्दी ऑर्गेनिक है ना, एक चिमुट भर डालने का उसके अंदर, वो घुमाने का और उसका गार्गलिंग करने का, कुछ नहीं होगा आपको। और वो मैंने क्या किया ना, वो मैंने गार्गलिंग भी किया, उसको पिया भी मैंने, हाँ पेट ऐसा साफ हो गया ना मेरा, इतना फर्स्ट क्लास हो गया ना मेरा पेट, पेट दर्द भी ख़त्म हो गया उससे, क्योंकि पेट दर्द वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से था, पेट साफ नहीं होता था। गौमूत्र अर्क करके वो पिया ना, नेक्स्ट डे इतना पेट साफ हो गया, सुबह टकाटक उठा मैं, पेट दर्द भी मेरा 90% ख़त्म हो गया। तभी मैं उसको लेकर नेपाल भी गया, मुझे मालूम था कि नेपाल में भी पब्लिक ऐसा बिंदास हो रहे हैं सब लोग, तो मुझे यहाँ प्रोग्राम है, यहाँ प्रोग्राम है, ऐसा भरगत सा प्रोग्राम था मेरा। तो मैंने क्या नियम है मालूम है नेपाल का नहीं सब कंट्री का, कि यहाँ से जाओगे तो यहाँ का आपका एक दिन पहले का रिपोर्ट चाहिए RT-PCR नेगेटिव। तो यहाँ से लेके गया मैं, एयरपोर्ट पर पूछा कि ये चलेगा क्या वापस आते वक्त, नहीं नहीं वहाँ से आपको करना पड़ेगा, काठमांडू से नेपाल से करना पड़ेगा, और एक दिन पहले का होना चाहिए और रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा कि कल का है, तो आपको छोड़ेंगे इंडिया में।
दूसरी कंट्रीज में जाते हैं नॉर्मली नहीं
चलता, नॉर्मल इंडिया में नहीं चलता है, लेकिन दूसरे कंट्री में जाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो मैंने फिर जिस दिन मुझे करना था रिपोर्टिंग, मतलब एक दिन पहले, उसके पहले दिन मैंने वो पूरा बॉटल वापस ले लिया, गरारा 3 डोज वापस गरारा सब कुछ किया, नेक्स्ट डे नेगेटिव आया, फर्स्ट क्लास वापस आया मैं। मतलब कोई चांस भी हो गया रहेगा, मैं एक प्रोग्राम में गया था, उसमें पूरे नेपाल के 2000 डिवोटीज थे नित्यानंद त्रयोदशी को, उन्होंने एक नियम बनाया कि अभी पूरे नेपाल में बहुत प्रीचिंग हो गया है, बहुत ज़बरदस्त प्रीचिंग हो गया है। तो वो कभी कैसा अभी उसमें यहाँ से कानपुर में कोई डिवोटीज है तो कौन मिलेगा उनको कभी लाइफ में। उन्होंने क्या किया है, नेपाल इतनी बड़ी कंट्री नहीं है कि भाई आप जम्मू कश्मीर सेंटर है, कन्याकुमारी सेंटर है, तो वहाँ से कैसे मिलेंगे लोग, लेकिन नेपाल इज़ लाइक मतलब अपना कोई भी स्टेट 10 गुना बड़ा है उससे, भारत से, भारत उनके उनसे हम लोग 40 गुना बड़े हैं, 40 गुना जनसंख्या में और क्षेत्रफल में। तो लोग ने क्या तय किया है कि भाई जन्माष्टमी ये एरिया में करने का, सब नेपाल के लोग वहाँ आने का। फिर नित्यानंद त्रयोदशी वो पाटन में करने का, फिर ये भक्तपुर में करने का, फिर ये जनकपुर में करने का, फिर ये विराटनगर में करने का, ये भरोवा में करने का, ऐसा उनका एक प्लान। तो वो ललितपुर में उनका नित्यानंद त्रयोदशी था। क्या माहौल था उसके अंदर, माई गॉड, क्या डिवोटीज भरे, खचाखच भरे हुए थे, कोई मांस वास कुछ नहीं उसके अंदर। हाँ, तो मुझे मालूम था कि इधर रिस्क की मामला है, मैं तो उधर से सटक गया, मैं तुरंत इच्छा देकर उधर से निकल गया मैं, लेकिन पता नहीं कहाँ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, इसलिए मैंने 25-26 तारीख को उसको लिया पूरा, और निगेटिव को लौट के आया मैं, ऐसा है। लेकिन ना डरना नहीं चाहिए आदमी को, डरने से ना हमारा इम्यूनिटी कम होता है और ज़्यादा हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। डर एक ऐसी वस्तु है ना, कोई भी इमोशन आपके मन में, कोई भी इमोशन हो, प्रेम की इमोशन हो, खुशी की इमोशन हो, या दुख की हो, या गुस्से की हो, या द्वेष की हो, या और कोई, या हर एक जो इमोशन है ना, उसके वजह से एक केमिकल शरीर में फ्लो होते रहते हैं उसके अनुसार। अभी डरने से धड़कन क्यों बढ़ती है, कुछ ना कुछ केमिकल आता होगा ना शरीर से बाहर। आपका मन डर में है तो शरीर क्या बता रहा है, धड़ 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 हो रहा है, हंसी पसीना आ रहा है, हंसी भी पसीना आ रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, एकदम हाथ पाँव कांप रहे हैं, मतलब कुछ केमिकल निकल रहा है ना कि नहीं निकल रहे हैं। जब खुशी हो रही है तो भी कुछ ना कुछ हो रहा है ना आपका, किसी को गले लगा रहा है प्रेम से बेटी को बहुत दिन के बाद में, तो एक इमोशन है ना उसका, उसके बाद में भी कुछ हार्मोन इकट्ठा होते हैं शरीर में, खुशी से भी अच्छे इकट्ठे होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि खुशी से जो हार्मोन निकलते हैं, आनंद से, खुशी से, प्रेम से जो निकलते हैं, वो आपके हेल्थ को अच्छा रखते हैं, आपके हेल्थ को अच्छा रखते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़िया बनाते हैं। और जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जो आपको किसी इसका जमता नहीं उसके साथ में, उसका गुस्सा आ रहा है, उसका झगड़ा हो रहा है, उसका इन्वी है उसके पास मन में, उसका ग्रीड है उसके मन में, तो जो केमिकल निर्माण होते हैं वो शरीर के इम्यूनिटी को ख़त्म करते हैं, कमज़ोर बनाते हैं, रोगी बनाते हैं आपको। इसलिए बहुत रोग जो लोग हैं ना, वो कंप्लेन करते हैं, निगेटिव बात करते हैं, वो बाद में बीमार पड़ते रहते हैं हमेशा, बीपी भी होता है, ये होता है, मतलब किसी के बारे में या किसी के विषय में हमेशा रोते रहना, मेरा क्या है, नवरात नहीं मजा, मतलब क्या है, मतलब मुलगात नहीं, मैं एक्टिस है, ये वॉट एवर, वो जो सत्या ही है वो। लेकिन ज़िंदगी भर उसके विषय में रोते रहना कि मैं तो क्या गरीब हूँ, ऐसा ही रहना, वो क्या होता है उससे फिर हम लोग अलग अलग रोग अट्रैक्ट करते हैं। आप लोगों को और बताता हूँ मैं कि ये एक पर्टिकुलर इमोशन है ना, उन लोगों को पर्टिकुलर कैंसर होता है, ये लोगों को ब्रेन माला होता है। मुझे वो पहले याद था, दामोदर पंडित ने बताया था मुझे, लेकिन मैं बाद में भूल गया सब, कि ब्रेस्ट कैंसर का भी एक साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी से ब्रेस्ट कैंसर होता है, और एक साइकोलॉजी है उससे ब्रेस्ट यूट्रस कैंसर होता है, और एक साइकोलॉजी है उसमें ब्रेन कैंसर होता है, और एक कैंसर है उससे ब्लड कैंसर होता है, बोन कैंसर होता है। सब लोगों को एक एक कैंसर क्यों नहीं होता है, उसके पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। हमारे अभी रिसर्च क्या बोलता है कि हमारे बड़ी आंतों में, जहाँ से स्टूल बाहर निकलता है, वो आंतों में एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया जाके बैठ जाते हैं, और वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया जब वहाँ पर बैठ के सक्सेसफुल होते हैं ना, मतलब वहाँ पर अपना घर बनाते हैं, तो आदमी को उसकी वजह से कहीं और कैंसर होता है। अभी उसका और रिसर्च चल रहा है कि कौन से बैक्टीरिया से कौन सा कैंसर हो सकता है आगे, ये हम आगे ही बता सकते हैं, ऐसा एक रिसर्च चल रहा है। अभी उसको आपको बताता हूँ देसी चीज़ क्या है उसके ऊपर, इतना सुंदर बात है ना वो, आपको देख के इतना आनंद होगा सुनकर कि इतनी सिंपल सी बात है कैंसर प्रिवेंट करने के लिए, इतनी सिंपल सी बात है। वो क्या बात है, या तो आप पंचगव्य खाओ, या तो आप गौमूत्र पियो, या तो आप रोज़ गाय का दही खाओ, या गाय का छाछ पियो, ये आप करोगे ना तो आपके इंटेस्टाइन में जितने भी कीटाणु विषाणु, जो घातक कीटाणु विषाणु है, वो सब समाप्त हो जाएंगे, और जो आपके शरीर के अनुकूल कीटाणु विषाणु हैं, अच्छे वाले भी होते हैं लोग, जो हम लोग छाछ पीने, छाछ में से जाते हैं शरीर में, वो क्या बोलते हैं कल्टिवेटेड ब्रॉथ, मतलब क्या, वो छाछ में क्यों डालते हैं हम लोग, उसके 2 चम्मच दही को डालते हैं उसके अंदर, उससे वो बैक्टीरिया ग्रो होते हैं उसके अंदर, और फिर आपको वो उसका अपना दस्त बंद कर देते हैं आपके। डरने का नहीं और सुनने का भी नहीं, आपको पूरा पुनः सुनो, पहले वो मेरा पूरा पॉइंट सुनो, फिर आपको समझ में आएगा कि कैंसर प्रिवेंट करने का कितना आसान तरीका है। साउथ इंडिया में ना रोज शाम को भी आपको वेंकट को मिलो, वो कुछ भी खाएगा ना, एंड में दही भात खाए बिना उसका खाना पूरा नहीं होता है, चाहिए ही चाहिए, दही भात के बिना उनका हो ही नहीं सकता है। तो वो दही भात खाने से दही का अंदर जो बैक्टीरिया है ना वो इंटेस्टाइन में जाके उन लोगों को नष्ट करके खुद बैठ जाता है। तो जब वो बैक्टीरिया बैठेगा ही नहीं तो कहीं और कैंसर उसके वजह से होना है वो होगा ही नहीं। गौमूत्र के अंदर भी वही गुण है, गौमूत्र पियेंगे आप रोज तो भी वही गुण है। पानी में मिला के पीना है आपको, दो चम्मच डाल के एक अर्क डाल के पीना है, ये तो फ्रेश गौमूत्र होगा तो भी उसको पानी में मिला के पीना है। या छाछ है वो भी उसके अंदर भी वही गुण है, और एक घी है उसके अंदर भी वही गुण है, और एक होता है पंचगव्य वो सबसे पावरफुल है, उसके अंदर दूध दही घी गौमूत्र और गोबर इसका मिश्रण करते हैं और उसको आठ बार रुमाल है ना धोती का होता है ना पतला रुमाल वो आठ बार फोल्ड करके उसको फिल्टर करने का, उसके अंदर जो नीचे गिरेगा ना पानी उसको पीना है आपको 10 से 15 ml, ज़्यादा नहीं पीना है, 2-3 चम्मच पीना है, बहुत स्वादिष्ट रहता है वो। आप कहते हैं बाप रे ई गौमूत्र गो ऐसा लगेगा आपको, लेकिन आप पीना लगोगे ना आपको उसका एडिक्शन हो जाएगा, इतना टेस्टी रहता है वो, सॉल्टी टेस्ट रहता है उसका और वो ब्राउन वाटर रहता है, आपको लगेगा मैं शेण खा रहा है ऐसा लगेगा आपको ऐसा, लेकिन आप खाओगे ना उसमें घी मिक्स करके वगैरह इतना टेस्टी लगता है वो सुबह रोज़ खाना होता है खाली पेट पे और उसके ऊपर एक ग्लास गर्म पानी पीना होता है, 2 घंटा कुछ नहीं करना होता। तो वो जो सब मिल मिक्सचर जानी चाहिए वो इंटेस्टाइन में सभी चीज़ों को हटा देते हैं और खुद बैठ जाते हैं वहाँ पर। जैसे आपने क्या किया, सब चोरों को भगा दिया और पुलिस को बिठा दिया, फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो वैसे रोज़ का पुलिस है वो। और कैंसर मिटाने का आपको है तो आपको रात को रोज़ 7 घंटे सोना चाहिए, वो भी लेटेस्ट से लेटेस्ट 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक। ये आप करोगे ना कभी कैंसर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि रात के समय पे शरीर के सेल्स जब टाइम पे सोते हो तो शरीर के सेल्स कैंसर के सेल को पकड़ते हैं और नष्ट कर देते हैं। लेट सोएगा तो वो काम नहीं होता है, फिर वो जमा होते हैं और जमा होते 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 अपनी जगह पकड़ते हैं, बोन में ब्रेस्ट में यूट्रस में हड्डी में सब जगह पकड़ते थे। तो एक दिन आपको लगेगा कि अरे अभी कैंसर हो गया, लेकिन वो बहुत साल से आपका जमा हो रहा है उधर। अपना झंडा फहराने के पहले पहला अपना आसन जमाएगा ना पहले, फिर अपना झंडा फहराएगा, वो बड़ी संख्या में बैठेगा फिर झंडा घुमाएगा, मैं आ गया हूँ अभी, टेस्ट करो मेरा अभी, सिटी स्कैन करो, ये करो वो करो। तो भय भी उसमें से एक ऐसा भावना है जिससे ये पैदा होता है। 3 प्रकार के पॉजिटिव हार्मोन हैं, सेरोटोनिन डोपामिन और ऑक्सीटोसिन, एक और चौथा मैं हमेशा भूलता हूँ मेरे को याद नहीं आता, लेकिन 4 प्रकार के ये पॉजिटिव हार्मोन हैं। नहीं नहीं, वो तो मेल हार्मोन है, फीमेल में कैसा रहेगा, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। तो ये 4 हार्मोन्स कैसे पैदा होते हैं, जब आप खुद संतुष्ट रहते हैं तो एक उत्पन्न होता है संतुष्टि से, जब आप सकारात्मक सोचते हैं किसके हर चीज़ के बारे में, चलो कोई मेरा पॉकेट मार के लेके गया, ठीक है रे जो मेरा नसीब बने था वो गया छोड़ो उसको, पॉजिटिव विचार करते ना जो हमेशा, फिर मार्क्स कम गिर गए तो बात नहीं अगली बार वापस ट्राई करेंगे अच्छा मार्क लाएंगे, रोते नहीं बैठेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग सकारात्मक विचार, उससे दूसरा हार्मोन तैयार होता है। और आप जब भी किस पर प्रेम करते हो, समझ में गोपीकांत को गले लगाया प्रेम से बहुत, तो वो हार्मोन पैदा होगा ऑक्सीटोसिन, और उससे आपका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। तीसरा जो हार्मोन है ना वो दूसरों के प्रति भावना का है, पहले दो है ना तो वो अपने खुद के अंदर की भावना है, मैं दुखी हूँ, मैं अपयश प्राप्त कर चुका हूँ, मेरा यशस्वी नहीं हो रहा हूँ, मैं फेल हो रहा हूँ, खुद के विषय में तकलीफ है उसको। और तीसरा विषय जो है दूसरों के प्रति है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपका दुखों में दुख में सहायता करना चाहता हूँ, करुणा प्रेम सेवा दूसरे के लिए ना, वो जब करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा पावरफुल हार्मोन तैयार होता है और उसमें से फिर पॉजिटिव एनर्जी शरीर में तैयार होती है और रोग वोग नष्ट हो जाता है। हर रोग की जड़ जो है ना वो नेगेटिव भावना है, याद रखना। आप सोचते होंगे मेरा घर में तो 5 भाई है, मैं ही क्यों गरीब, बाकी सब तो कितने अच्छे इस्टेब्लिश हो गए सब लोग, मेरे को क्यों गरीब होना था, मैंने ऐसा क्या किया है, या मेरी बीवी काली क्यों, बाकी सबकी बीवी गोरी गोरी क्यों, मतलब कुछ भी हो एक फालतू विचार, उसके घर में ही तो कोई 3 बेडरूम का फ्लैट है, मेरे पास तो 1 ही बेडरूम का फ्लैट भी नहीं है, ऐसे हम लोग सोचते बैठते हैं और उसी में परेशान रहते हैं। मैं भी इसके घर पैदा हो गया, लेकिन मेरे बहनों को देखो, मेरे भाइयों को देखो, कितना आगे बढ़ चुके हो, मैं तो बेकार में हरे कृष्ण में आ गया, देखो पीछे रह गया। ये क्या है, मनगढ़ंत बातें हैं सब, तो सच्चाई को बदलते नहीं है, आप कितना भी रोएंगे सच्चाई बदलती नहीं है, और कितना भी हंसेंगे सच्चाई बदलती नहीं है, सच्चाई को जैसे है वैसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। सच्चाई को जैसा है वैसा स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है, उसी से आदमी प्रगति कर सकता है। 10th कैंटो में प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्ण चैप्टर में कि मन की शुद्धि किससे होती है। मैं आपको एक क्लू देता हूँ, बॉडी की शुद्धि किससे होती है बताओ, स्नान करने से। आपने 3 बार स्नान किया तो प्रभुपाद लिखते हैं, आयुर्वेद भी बोलता है कि 3 बार स्नान करने से आयु बढ़ती है। इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब स्नान करते हैं तो वायु शरीर में कम हो जाता है, वात कम हो जाता है, और वात ही बुढ़ापे का लक्षण है। तो 3 बार स्नान करने से ऑलरेडी आप यहाँ मसाज कर रहे हो, ऑटोमेटिक मसाज कर रहे हो शरीर में, सब कुछ सबको तो हाथ लगा रहे हैं ना, ऑटोमेटिक मसाज हो रहा है, तो वात कम होता है, तो जरा जो है बुढ़ापा वो दूर चले जाता है और फिर आयु बढ़ती है। इसलिए मालिश करके स्नान करना भी और आयु बढ़ाने के लिए अच्छा है। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत साल तक चुस्त रहे, क्योंकि वो रोज़ मालिश करते थे, रोज़ वॉकिंग करते थे, ये सब करने से वात कम होता है, वात कम करने से बुढ़ापा दूर होता है, और बुढ़ापा दूर होने से आयु बढ़ती है ना, मतलब जिंदा ज़्यादा रहते हैं हम लोग। तो मन की शुद्धि किस प्रकार से होती है, वो तो आत्मा की शुद्धि होती है, वो आत्मा की शुद्धि जब से होती है। तो मन की शुद्धि कैसे होती है, शास्त्र कहता है कि मन की शुद्धि समाधान से होती है। आप कितने समाधानी हो, कितने संतुष्ट हो, दिए हुए स्थिति में आप गरीब हो, दिखने में सुंदर नहीं हो, आप गरीब पढ़े लिखे नहीं हो, आपका जॉब इतना ठीक नहीं है, पति अच्छा नहीं है आपका, पत्नी आपकी अच्छी नहीं है, बच्चे लोग सुनते नहीं हैं आपके, फिर भी आपको एक मन में ऐसा एक भावना है कि जो भी है मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मेरा पति शराबी है मैं कोशिश करूँगी लेकिन नहीं छोड़ता तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन खाली हमेशा क्रिबिंग करते रहना, दुखी रहना, उसके बारे में परेशान रहना, या तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, अभी हमें कैसा है, अभी क्या कर सकते हैं, वार्षिक बने को सर जादू कर सकते हैं और दौड़ा सकते हैं, अभी एक मंत्र बोला तो भागने लगेगी, वो नहीं हो सकता है, जो है वो है, कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, बी हैप्पी, डू योर सर्विस, आपका जो ड्यूटी है वो करो, बाकी भगवान देख लेंगे क्या है। अब मम्मी घर पे आ गई 92 ईयर्स की, अभी क्या कर सकते हैं, क्या प्रार्थना करें भगवान के लिए जल्दी चले जाए, वो जो है वो है, अभी क्या, व्हाट इज़ द रियलिटी, जो है बदल नहीं सकते हम लोग, जब जाना है तब जाएंगे, जब तक रहेंगे तो रहेंगे, हमको सेवा देंगे, हम पुण्य कमाएंगे, करते रहेंगे, रो रो के करने में क्या मतलब है उसका, रोज रो रहे हैं क्या रे क्या रे। तो मन शुद्ध तब होता है जब वो संतुष्ट होता है, और आप ही आप सब लोग जानते हो संतुष्ट मन क्या नहीं कर सकता, सोचो आप, और दुखी मन क्या बुरा नहीं कर सकता आपका, आप केवल दुखी हो, 200 ही इंक्रीमेंट मिला कोरोना का बख्शीश कल 5,000 मिला, क्या रे, मतलब दुखी होने के लिए आदमी को कारण लगता नहीं लाइफ में, मैं क्यों बुढ़ी हो रही हूँ, मैं को इतना उम्र क्यों हो रहा है, अरे हो गया अभी साल तो बुढ़ा होना ही है, अभी क्या करेंगे, अभी मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को तो जवान रहना चाहिए हमेशा, लेकिन अभी एज बढ़ रहा है तो क्या करेंगे उसको, अभी कभी कभी व्हील चेयर में आऊँगा इधर, अभी क्या करेंगे उसके लिए, करना क्या है, नथिंग यू कैन डू, तो बी हैप्पी। वो एक ट्रांजिशन है, वो जैसे जन्म हुआ वैसे मृत्यु भी होगी, जातस्य हि ध्रुव मृत्युर, है ना, और लेक्चर में बैठकर सोना भी अनिवार्य है, अभी क्या करेंगे उसको, नींद आती रहती है, व्हाट टू डू, इट्स रियलिटी, वन पार्टनर इज स्लीपिंग, क्या करें, तो लेक्चर बंद करें, लेक्चर देते रहेंगे, इसमें क्या है प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब क्या है, संतुष्ट मन जो है ना वो आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है, अगर आप दिए हुए स्थिति में खुश हो तो आप जीवन में अपने चमत्कार कर सकते हो खुद के लिए, पर बाकी लोगों को भूल जाओ। बलि महाराज बोल रहे हैं वामन देव को, तुम तो इतना तेजस्वी ब्राह्मण हो, इतना बुद्धिमान ब्राह्मण लगते हो, लेकिन लगते हो बुद्धू हो तुम, क्योंकि लगते हो तेजस्वी लेकिन हो नहीं तेजस्वी बुद्धिमान, क्योंकि अगर बुद्धिमान होते तो मुझ जैसे आदमी से एक लोक मांग लेते आप दान में, और मुझ जैसे आदमी से 3 पग भूमि मांग रहे हो, मैं तुमको एक देश दे सकता हूँ, एक लोक दे सकता हूँ, और आप 3 पग भूमि मांग रहे हैं। तो वामन देव क्या बोलते हैं उसको, देखो आदमी को ना उसके पास जो है ना उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, और जो उसको ज़रूरत है उतनी उसको इच्छा करनी चाहिए, ये नहीं कि मैं रोज़ ताजमहल में खाऊं, रोज़ 5-स्टार होटल में खाऊं, ज़रूरत नहीं ना, रोज़ मिलने वाला नहीं आपको वो, एक दिन मिल गया भाई, बाई चांस लग बाई चांस की शादी में आपको बुलाया गया, आप थे उधर, आपने 56 वो खाया उधर का, नेक्स्ट डे आपको दाल रोटी खाना है घर पे। तो ऐसा क्या बोल रहे हैं कि आपको जो जरूरत है ना उसी का आप सोचो हमेशा, जो जरूरत नहीं है खाली चकाचौंध के लिए जरूरत है आपको लगता है जरूर मिलना चाहिए उसका इच्छा नहीं करना चाहिए। और उसका प्रूफ क्या है, देखो आपके पास तीन लोगों का साम्राज्य है, बलि महाराज ने तीन लोग जीत लिए थे, देवताओं को भगा कर अपना कब्जा किया था, आप तीन लोगों के स्वामी हो फिर भी तीन लोगों में रहने वाले देवता लोग आपको सलाम नहीं करते, आपको इंद्र नहीं बनाते, इसलिए आप 100 यज्ञ करके इंद्र बनना चाहते हो। इसका मतलब तीन लोगों का स्वामी बनने के बाद भी आप असंतुष्ट हो और कुछ कर रहे हो इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए, तो मुझे नहीं बनना आप जैसा, मेरे को तीन भाग भूमि की जरूरत है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ और मुझे मांगना भी नहीं है और आप देना भी नहीं मुझे। कितनी इम्पोर्टेंट बात है, आपके पास आज जो है उसमें आप अगर संतुष्ट हैं तो आप ना बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, खुद के लिए और दूसरे लोगों के लिए। लेकिन आज आपके पास जो भी है उसमें आप दुखी हो तो आप दुखों ही दुखी लोगों को बांटेंगे, क्योंकि आपको जो भी मिलने आएगा आप बोलेंगे क्या करें यही बोलते रहेंगे आप उसको। और जो आदमी संतुष्ट रहेगा ना वो संतुष्टि बांटते रहेगा, उसको मिलने से आपको भी लगेगा मैं दुखी हूँ लेकिन मैं फील कर रहा हूँ कि संतुष्ट हूँ। मैं एक डॉक्टर और उसके वाइफ को लेके पशुपतिनाथ के मंदिर में गया था, उसको सुबह में मिला, एक घंटा मिला सुबह, उसके बच्चों बातचीत किया, शाम को हम लोग मिलके पशुपतिनाथ मंदिर गए। तो मैं बैठा हूँ एक जगह पर मस्त में, मैं शिव जी को मंदिर को देख रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, तो डॉक्टर आके मुझे बोलता है प्रभु जी आपको देखे ना बहुत सेटिस्फाइड लग रहा है, मुझे बहुत पीसफुल लग रहा है। बोला रियली वाओ वंडरफुल, मीनिंग मैं कुछ जादू नहीं कर रहा हूँ, मैं जो हूँ वह हूँ और वो उसी का अनुभव कर रहे हैं, मैं कुछ मंत्र बोल के कुछ शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ या कुछ ऐसा कुछ जादू नहीं कर रहा हूँ, मैं जो हूँ वो हूँ, आई एम व्हाट आई एम सिटिंग देयर एज व्हाट आई एम, और वो फील कर रहे हैं मुझे आके बता रहे, पूछा आपको देख के बहुत पीसफुल लग रहा है, बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। बोला बढ़िया चीज़ है बहुत, लेकिन अगर मैं मन में दुखी होता फ्रस्ट्रेट होता तो वही उसको फील करते कि प्रभु जी ना थोड़ा नाराज है, कुछ है उनके मन में चल रहा है कशमकश। मैं इसका हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, समझो प्रीति राधिका यहाँ पर एक देसी इत्र लगाकर आई है तो उसका खुशबू रूम पे आएगा कि नहीं आएगा, या 5 दिन पुराना कोई दुपट्टा जो गंदा है वो पहन के आई है तो उसका बदबू भी आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब आपका जो सुगंध है या आपकी जो भी गंध है, सू या दू होगी जो भी है, जो सू या दुर्गंध है वो आपके साथ ही जाती रहेगी हमेशा, जहाँ जहाँ जाएंगे लोग फील करेंगे कि भाई इसने बहुत बड़ा अच्छा इत्र लगाया, आज कौन सा इत्र लगाया, कहाँ से लाया, किधर मिलता है, कितना कॉस्ट है उसका पूछेंगे आप। उसी तरह से आप जो भी भाव मन में लेकर घूम रहे हो उसका असर सबके आत्मा पर होते ही रहता है, आपको मुंह लटका के बैठने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या हुआ आप दुखी हो क्या आज, ऐसा जरूरत नहीं है। आपके मन में जो भी नेगेटिविटी है वो दूसरों को असर करेगी ही, आपके साथ में बैठेंगे तो उसका फीलिंग उसको होगा ही होगा, उसको वो डिफाइन करने का मुश्किल है उसको कि भाई एक्चुअली क्या फील हो रहा है उसको, लेकिन अस्वस्थ महसूस होगा उसको। और खुश व्यक्ति के साथ सानिध्य में आप जाओगे तो आपको वही खुशी का अनुभव भी होगा। हम लोग कितनी बार अपने गुरु महाराज के साथ में जाते हैं कि ये 50 प्रश्न पूछना है उनमें सब पूछूंगा, आज वो सबका उत्तर चाहिए मुझे, कई दिन से परेशान हूँ उसका उत्तर मुझे चाहिए, और जैसे ही गुरु महाराज के रूम में एंटर करते ना सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और लगता है अभी क्या पूछूँ, क्या पूछूँ अभी। सो गुरु महाराज बोलते हैं बोलो बोलो सो क्या बोलना है आपको, नहीं महाराज एवरीथिंग इज ओके, हाँ महाराज एवरीथिंग इज ओके, तो किधर गए प्रश्न वो, क्योंकि गुरु महाराज का जो है ना ऑरा, जो उनका आत्मा का जो सर्कल है ना वो इतना प्रभावी है कि उसमें प्रवेश करते ही आपका जो चिंतनशील अपना जो चिंतामय मन था ना वो डिफीट हो गया उसमें, वो उनकी प्रभाव ने उसको डिफीट कर दिया, उसको उनकी जो आभा है उसने परास्त कर दिया उसको, इसलिए आपके मन में जो भी था वो डिफीट हो गया, उनकी आभा में आ गया वो भी, तो वो जो आभा में संतुष्टि है वो संतुष्टि आप भी महसूस कर रहे हो। इसलिए आप लोग सब लोगों को एक प्रण लेना चाहिए, स्पेशली क्योंकि आप स्पिरिचुअल केयर में काम करते हो, इसलिए क्या प्रण लेना चाहिए कि मुझे मिलकर लोगों को केवल खुशी ही मिलनी चाहिए, मुझे मिलकर कभी भी लोगों को असंतुष्टि चिंता परेशानी नहीं होनी चाहिए। भले मेरे दिल में घर में परेशानी चल रही है, फिर भी मुझे मिलकर किसको परेशानी का अनुभव नहीं होना चाहिए। ऐसा मुमकिन है क्या? हाउ? आपके घर में परेशानी है, आपका बच्चा बीमार है, आपका हस्बैंड बीमार है, आपका हस्बैंड का कोरोना में जॉब छूट चुका है, ये सब है, फिर भी आप जिसको मिलेगा उसको आनंद का अनुभव हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि देखो हमारे हर एक जीवन में एक दुखमय घटनाएं होती है, एक सुखमय घटनाएं होती है, उसमें से कोई फ्री नहीं है। राधानंद महाराज भी फ्री नहीं है, प्रभुपाद भी फ्री नहीं थे। तो नायर से झगड़ा कर रहे हैं, उधर जो मंदिर बांध रहे हैं, उधर जप करके आनंद भी ले रहे हैं, उधर नायर से कोर्ट केस भी चल रहा है, गुड फाइट इज गोइंग ऑन। यहाँ परेशानी, झांसी में मंदिर बंद हो गया, उनका मूवमेंट खत्म हो गया, खाली करना पड़ा उनको झांसी में से, लीग ऑफ डिवोटीज खत्म हो गया। तो संघर्ष उन्होंने भी किया, प्रभुपाद ने किया, जयप्रताप महाराज कर रहे हैं अभी, इतना कितना परेशानी है उनको, सोचो आप जरा। हम लोगों को तकलीफ है क्या उनके जैसा? जयप्रताप महाराज तकलीफ हमको है क्या जो तकलीफ उठा रहे हैं? रमेश बाबा जी महाराज इतना तकलीफ में, आपको तकलीफ है क्या उतनी? बिल्कुल नहीं है। फिर भी उनको मिलते ही आपको शांति का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि उनकी पॉजिटिविटी इतनी स्ट्रांग है कि जो भी नेगेटिविटी जो है उनके अंदर बाहर शरीर के अंदर, उसको नगण्य है वो, मतलब उसका अस्तित्व है ही नहीं, ऐसा ही है उसका। तो पॉजिटिविटी जो है ना, वो सकारात्मक भावना जो है ना, वो आपको क्रिएट करनी है आपके अंदर। मैं नहीं करता क्रिएट, मैं आपको इंस्पायर कर सकता हूँ, लेकिन करना आपको ही है क्रिएट। अभी आप ब्रजेश्वर को कभी मिलो, आपको कभी लगेगा नहीं कि वो उसके घर में क्या हो रहा है, और घर में कितना संघर्ष हो रहा है, आपको कभी लगेगा नहीं। आप मिलोगे तो आपको लगेगा अरे सब मजे में रहे, मस्त एकदम, इतना आनंद लगता है मिलके उनको। फिर मैं बताता, आपको पता नहीं है कि कहाँ कैसे किस में से गुजर रही है वो फिलहाल अभी, लेकिन अभी आपको बोलेगा नहीं मेरे को इधर दुखता है, मेरे को उधर दुखता है, घर में बच्चे परेशान है, सासू माँ इतनी तकलीफ देती है, कभी भी आपको बताएगी नहीं। मैं बताऊँगा उसके बारे में जाके लोगों को, लेकिन वो अपने आप में कभी भी किसी को बताएगी नहीं फ़ोन करके कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हाँ, ज़्यादा भाव नहीं देते उसको, हम लोग उसको ज़्यादा भाव देते हैं, फिर वो सर पे आके बैठता है नेगेटिविटी तुम्हारी। जिस चीज़ को आप अपनाओगे ना, वो तुम्हारे सर पे आके बैठेगा। तो नेगेटिविटी को अपनाओगे तो वो तुम्हारे सर पे आके बैठेगा, वो खाएगा तुम्हारा दिमाग पूरा, छोड़ेगा ही नहीं तुमको। वो विक्रम वितरण में क्या है, वो उसके कंधे पे आके बैठ गया, वो ही डिक्टेट कर रहा है उसको, ऐसा कर वैसा कर, ये बोल वो बोल। विक्रम वितरण में क्या है, विक्रम ही बोलते, वितरण ही बोलते रहते हैं उसको, विक्रम वैसे करते रहते हैं, क्योंकि उसने उसको पहले एक्सेप्ट किया अपने कंधे पे ना, उसको फेंक देगा तो वो दूसरा कोई आके बैठेगा, तो कोई बैठेगा ही नहीं उसके ऊपर। लेकिन विक्रम ने वेताल को एक्सेप्ट किया है, इसलिए वेताल का जो मन है वो तुम पर छा गया है, उसी का असर तुम पे चल रहा है। तो आप बताओ, अभी किसी के मराठी में कहावत है, जया अंगी मोटे पण तया यातना कठिन। जितने आप संत बनोगे उतना कठिन तपस्या होती है। तो हम लोग उस रूल से कह सकते हैं कि हमारे जीवन में जो तकलीफ चल रही है ना, हमारे गुरु के जीवन में 100 गुना तकलीफ अधिक रहेगी, क्योंकि वो बहुत बड़े महान संत हैं, इसलिए ये रूल के हिसाब से उनको यातना ज़्यादा रहेगा सबसे हमारे से, हर प्रकार की अलग यातना रहेगी। लेकिन उनको मिलकर शांत क्यों लगता है हमको? तुकाराम महाराज का वो पोती डुबा दिया, जिंदगी मतलब बर्बाद हो गया उनका पूरा, तो वो सुनकर आज हमको प्रेरणा क्यों मिलती है? क्योंकि तुकाराम महाराज ने क्या बोला, ठीक है आपकी इच्छा है तो मैं डुबा देता हूँ, आपका ही कार्य कर रहा हूँ मैं तो बैठूंगा यहाँ पर भजन करूँगा, जो करना है करो, उधर ही बैठे खाना पीना नहीं खाया, भजन किया, भगवान को निकालना पड़ा, इंद्रायणी देवी को आके उधर पोती देना पड़ा, उसको भी ड्राई पोती, वेट भी पोती नहीं थी। इसको बोलते पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी जो होती ना, वो पॉजिटिविटी को ही आकर्षित करती है। और नेगेटिविटी कैसे होता ना, समझो आप रोने वाली औरत हो तो आपको रोने वाले की औरत की कंपनी मिलेगी, और दोनों मिलकर बात साथ में बैठ के प्रेम से रोएंगे है ना, सिमिलर माइंडसेट अट्रैक्ट इच अदर। अब समझो ये रवि आदमी जो ना बहुत पैसे के, बहुत पैसे के लिए बहुत उसका माइंड पैसे में है, तो मेरा माइंड तो पैसे में है, तो मैं उसी से जाकर बैठेगा बात करेगा, क्योंकि मेरा बात उसके साथ मैच होगा ना। फिर वो जब मैं बोलेगा अरे उधर कुछ करना चाहिए, थोड़ा सा उधर भी पैसा है, इधर भी डालना चाहिए, तो बोला भाई अच्छा है। आप हमेशा आपके साथ वाले माइंडसेट के लोगों के साथ बैठते हो हमेशा। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप स्पिरिचुअल लोगों के साथ ही बैठेंगे, अगर आप मनी माइंडेड हो तो उसमें से आप ढूंढेंगे मनी माइंडेड कौन है, उसके साथ जाके बैठोगे आप। क्योंकि आपका जो माइंड का विचार है ना, वो मिलना चाहिए ना। समझो अभी मेरे साथ आके बैठोगे और शेयर मार्केट की बात करोगे तुम, क्यों क्या होगा? कभी ट्राई करो आप, मेरे साथ में आके बैठो, बोले महाराज प्रभु जी वो शेयर बहुत बढ़ गया है, रिलायंस का शेयर बहुत बढ़ गया है, ऐसा बोलो। तो मैं बोला तुम्हें कोई मिला नहीं क्या सुबह से आज? क्योंकि मेरे को उसमें बिल्कुल रुचि नहीं है। तो वो क्या करेगा, जिसको रुचि है उसके साथ बैठ के बात करेगा। धंधे के बारे में बात करें तो धंधे वाले के साथ बैठ के बात करेगा, वो मेरे साथ नहीं कर सकता है। मेरे को गति नहीं उसके अंदर, मैं क्या बात करूँ, वो समझता ही नहीं उसको अंदर मेरे, ऐसा है। तो हर व्यक्ति अपने ही माइंडसेट के लोगों से दोस्ती करता है। जो नेगेटिव है वो नेगेटिव साथ साथ ही बैठता है, उसके साथ गपशप चलाते रहते हैं, वही बातें करते रहते गोल 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 गोल। जो रोने वाले लोग हैं ना कि मेरे को पैर दुख रहा है, पीठ दुख रही है, वो उनसे ही बैठ के बात करेंगे, फिर वो अपना सुनाएगा या अपना सुनाएगा, दोनों खुश। वो बोलेगा पीठ दुखता है, तो बोलेगा तेरे साथ पीठ मेरे को दुखता है, तो क्या पेट की बात कर रहा है, मेरा कंधा भी दुखता है। अच्छा मेरा वो मेरा कंधा भी दुखा कल दिन, कल आज ठीक है, कल दुखा था। मतलब इसी विषय में लगे रहेंगे, क्योंकि अपना विषय आपका आपने चूज वो किया है। तब शुरू हुई थी बात भय से। तो भय एक ऐसी वस्तु है जो केवल अज्ञान की वजह से होती है। जिसको सत्य का ज्ञान नहीं है उसी को भय पैदा होता है, और सत्य का जिसको ज्ञान है उसको भय का कोई कारण ही नहीं है। दूसरा एक भय का उपाय है, जिसने भगवान का सहारा लिया है उसको भय नहीं छूता है कभी। सही सहारा जिसने भगवान का लिया है उसको कभी भय छूता नहीं है, वो चाहते हुए छूएगा नहीं उसको। क्योंकि जिसका सहारा लिया है उसने, वो इतना अभय चरणारविंद है, अभयता का वो सागर है पूरा। जिसका सहारा लिया आपने, आपको भय कैसे होगा? ऐसा है। तो मुझे खुद को भी आश्चर्य हुआ कि मैं सपने में इतना खुश कैसे हुआ। मैं एकदम ही खुश हो गया था, बोले कितना दिन जीना जीने का भौतिक दुनिया में, कभी ना कभी तो जाना है, अभी वो टाइम आ गया तो कितनी अच्छी बात है, अभी चलते हैं भगवान के पास, कल के बदले में आज ही चलते हैं, वेरी गुड। ऐसा है। तो दृष्टिकोण बदलना चाहिए जीवन में। दृष्टिकोण बदलेगा ना सब बदलेगा आपके जीवन में। आपका दृष्टिकोण बदलेगा, देखने का तरीका बदलेगा ना आपका, सब बदलेगा। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आपको कहता वाह क्या सुंदर जवान औरत है यार, एक देख रहा हूँ और कहूँगा अरे तो माताजी, मेरी माताजी है ये, मेरी माँ की तरह है, औरत वही है, उसमें कुछ बदली नहीं हो रहा है, साइज भी सेम, सब कुछ सेम है उसका, लेकिन मेरा दृष्टिकोण में चेंज हो रहा है, तो मुझे उसका लाभ होगा या नुकसान होगा? ऐसा है। जैसे एक एक व्यक्ति ना एक लेक्चर में बैठा था, और लेक्चर वाला लेक्चर दे रहा था, और वो सामने बैठ के ना ना रो रहा था, इतना रो रहा था, तो कथाकार पर इम्प्रेस हो गया। सर अभी मैं कुछ बोला और आपको आंखें में आंसू आए, तो मैं बोला वाह ये माता जी को समझ में आया मैं क्या बोला, एक्चुअली इसको समझ में आया इसलिए वो रो रही है। तो वो इम्प्रेस हो गया बहुत। तो कथा के बाद में गया, बोलता आप क्या भावुक आदमी है, आपको कितना आपको सब समझ में आया मैं क्या बोल रहा है, क्यों रो रहे थे आप इतना? तो क्या बोला गा उसने, वो बोला दो दिन के पहले मेरा बोकड़ का मृत्यु हो गया, मेरे घर पे मेरा बोकड़ था, मतलब बकरे का हस्बैंड है ना, वो नर 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 बकरा, हाँ उसको एक मतलब उसको दाढ़ी भी होती है बोकड़ को वगैरह। तो वो बोलता है कि आपकी दाढ़ी उसके जैसी थी कहे, तो बार बार अब मेरे बोकड़ की आधारित है, मतलब रोना आ रहा था मेरे को। अभी आपको लग रहा है कि वो कथा सुनकर रो रहा है, लेकिन उसके दृष्टिकोण क्या है, उसको बोकड़ की याद आ रही है इसलिए वो रो रहा है। तो क्या किसी को लग के क्या किसी को रोना आएगा, क्या भरोसा उसका, सुन रहा है कथा सुन के भाव में आ रहा है वो, लेकिन उसको अपने बोकड़ की याद आ रही है, क्या करें उसको भी पता? ऐसा है। इसलिए मैं भी कथा को अभी कथा कर रहा हूँ, तो किसके मन में क्या विचार चल रहा है मेरे को मालूम नहीं है, आपको ही मालूम आप क्या सोच रहे हैं। कुछ लड़कियाँ ऐसे होती है जो कथा में जाती हैं खाली वो कथाकार को पटाने के लिए, तो बाद में देखते हैं कि वो कथाकार की शादी हो गई, पहले ब्रह्मचारी था। क्योंकि तो एक लड़की आगे सामने आके आगे बैठती थी हमेशा, उसको वाह प्रभु जी ने क्या सुंदर क्लास दिया, क्या सुंदर क्लास दिया, वो तो एकदम खुश होते होते एक दिन शादी ही कर दिया उससे। तो उसका उद्देश्य कथा में रुचि नहीं था, उसका हस्बैंड ढूंढने का था, वो देगा ये अच्छा हस्बैंड है धन भी अच्छा है इसके पास, नॉलेज भी अच्छा है, प्रसिद्धि भी अच्छी है उसकी, आई वॉन्ट टू मैरी हिम, तो रोज कथा में जा देते हैं। आपको लग रहा है कितना भक्ति में इंटरेस्ट है इसको, लेकिन इंटरेस्ट क्या था, हस्बैंड पटाने में इंटरेस्ट था उसका। जब वो पट गया हस्बैंड तो कथा में आना बंद, क्योंकि उद्देश्य सफल हो गया उसका। तो कौन किस व्यक्ति को क्या दृष्टि से देखता है, ये भी आपका दृष्टिकोण है ना। बहुत लोग पहले मुफ्तलाल के पास काउंसिलर बनना चाहते थे, क्योंकि मुफ्तलाल का काउंसिलर बनेगा तो फिर वो लोन देगा, कुछ हेल्प करेगा, फाइनेंशियल कुछ करेगा, इसलिए उसको भी ज़्यादा एप्लीकेशन था उनके पास कि मुझे काउंसिलर उनको बनना है। उद्देश्य स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं है। रिच आदमी का काउंसिलर बनेगा तो मुझे कभी भी डिफिकल्टी हुआ तो मुझे हेल्प करेगा, ऐसे दृष्टिकोण लोगों के होते हैं कई प्रकार के। वो लोग फिर आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाते हैं, बुद्धि बहुत शाखम हो जाती है उनकी, तो फिर वो एक ही हम कुरुनंदना नहीं हो सकता उसका। इसलिए आप अपने भाव पर चेक रखो हमेशा, आपके मन में क्या भाव है आज, क्योंकि आपके मन में आज जो भाव है वो बाजू वाले को अफेक्ट करेगा ही किसी भी कीमत पर। और आपका काम ही ऐसा है कि आपका ही भाव लोगों को स्वीकार करना है। पेशेंट के बजाय आप क्या कर रहे हो, आपका जो भाव है वो, आपका जो डब्बे में जो भर के आए हो, कितना भर के लाए हो उतने लोगों को दे रहे हो आप। डब्बा खाली है तो कुछ नहीं, आज डब्बा भरा हुआ है तो लोगों को दे रहे हो। इसमें अगर कोई निगेटिविटी है तो निगेटिव दे रहे हो, उसको पॉजिटिविटी पॉजिटिव दे रहे हो। तो स्पिरिचुअल गुरु का आसान काम नहीं है, ऐसा ही आके बैठे दूसरा बातें किया, फॉर्म भरा, आ गए नीचे, हो गया ड्यूटी आपका, वो एपेक्स में भर दिया चार, मेरा आज का पेशेंट हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सब दिल की बातें हैं। दिल से करेंगे तो दिल से आप असर होगा, रिजल्ट दिखेगा आपको। नहीं तो अगर आंखों में धूल झोंकना है तो क्या है, जाने का, दो बार मिलने का, फॉर्म भरने का, उधर आके एंट्री करने का, हो गया काम। परिवर्तन नहीं मिलेगा आपको, परिवर्तन तब मिलेगा जब आपके हृदय में कुछ है सब्सटेंस, तो आप दूसरों को मिलेगा उसका, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप वही बांटते हो जो आपके पास हो, आप वो नहीं बांट सकते जो आपके पास नहीं है। ऐसा है, हरी बोल।